द प्रिंट के सुप्रभात अंक में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण मुरारी और आज आपको हिना फातिमा की एक रिपोर्ट पढ़कर सुनाने जा रहा हूं, जिसमें वो लिखती हैं कि विरोध करने का इरादा नहीं। 4 साल पहले CAA के खिलाफ शाहीन बाग गरजा था, अब वहां बेचैनी भरी शांति है। वे आगे लिखती हैं कि मोदी सरकार के नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के ऐलान के बाद दिल्ली के शाहीन बाग में बेचैनी पसरी है। दक्षिणी दिल्ली के इस इलाके की महिलाएं व्यथित हैं। उनका कहना है कि यह कदम एक चुनावी पैंतरेबाजी है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की रणनीति है, लेकिन अपनी नाराजगी के बावजूद इस बार उनका विरोध करने का इरादा नहीं है। 4 साल पहले 15 दिसंबर 2019 को वहीं शाहीन बाग संसद में CAA के पारित होने पर उग्र विरोध प्रदर्शन का केंद्र बन गया था। यह आंदोलन इतना शक्तिशाली था कि इसने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। महिलाओं के नेतृत्व में यह 4 महीने तक चला, यहाँ तक कि महामारी के शुरुआत होने के दौरान भी जारी रहा, जब तक कि बढ़ते कोविड मामलों के बीच राष्ट्रीय राजधानी में धारा 144 लागू होने के 2 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने आखिरकार विरोध स्थल को खाली नहीं करवा दिया। शाहीनबाग निवासी 56 वर्षीय मेकअप आर्टिस्ट हिना अहमद बताती हैं कि हम सरकार को अपनी चिंताएं व्यक्त करने के लिए 2019 में इकट्ठा हुए थे, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। अगर यह सरकार नहीं सुनती है तो हमारा विरोध करने का कोई इरादा नहीं है। जामिया मिलिया इस्लामिया में स्टूडेंट्स विवादास्पद कानून के लागू होने के खिलाफ अपना आंदोलन आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। सरकार की घोषणा के बाद से कैंपस में भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात है, जो कुछ स्टूडेंट्स द्वारा विरोध प्रदर्शन के मद्देनज़र बढ़ा दी गई है। इसके पहले 2019 में कैंपस में CAA विरोधी प्रदर्शनों के बीच पुलिस ने कथित तौर पर विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में घुसकर विद्यार्थियों पर अंधाधुंध लाठीचार्ज किया था, जिसके 4 साल बाद ऐसा दोबारा हुआ है। सरकार की घोषणा के बाद पूर्वी दिल्ली में कुछ जगहों पर पुलिस ने 43 हॉटस्पॉट की पहचान की और वहां गश्त की। शाहीन कौसर, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष हैं, शाहीन बाग आंदोलन का हिस्सा रही थी। 2020 में विरोध प्रदर्शन खत्म होने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। उनकी थ्योरी कहती है कि मोदी सरकार के पास कोई महत्वपूर्ण मुद्दा ही नहीं है जिसे वे आगामी लोकसभा चुनावों के लिए चर्चा का केंद्र बना सके। यही वजह है कि उसने CAA लागू करने का फैसला किया है। हालांकि वे इस बात पर जोर देती हैं कि इस बार विरोध प्रदर्शन की कोई योजना नहीं है। कौसर बताती हैं कि संविधान के अनुसार यह किया जाना चाहिए था, ये सब वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा रहा है। भाजपा सरकार देश के हालात खराब करना चाहती है। हमारा विरोध शांतिपूर्ण होगा, क्योंकि शांति बनाए रखना नागरिक समाज की भी जिम्मेदारी है। कोई अदालत का दरवाज़ा खटखटाकर भी विरोध कर सकता है। हालांकि कौसर की अदालत जाने की अभी कोई योजना नहीं है। हालांकि जामिया में विद्यार्थियों ने 2019 के आंदोलन को आगे बढ़ाने के अपने इरादे व्यक्त किए हैं। एक विद्यार्थी और अखिल भारतीय क्रांतिकारी छात्र संगठन के सदस्य निरंजन के अनुसार सरकार का यह कदम भारत को फांसीवादी हिंदू राष्ट्र में बदलने की बेताब कोशिश है। उनके अनुसार असली मुद्दा सिर्फ नियमों की सामग्री नहीं, बल्कि CAA का कार्यान्वयन है, जिसके बारे में उनका कहना है कि यह स्वाभाविक रूप से अन्यायपूर्ण, भेदभावपूर्ण और विभाजनकारी है। उनके लिए इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि यह अधिनियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चुनावी बॉन्ड डेटा पेश करने से ठीक 1 दिन पहले लागू किया गया था। निरंजन बताते हैं कि यह कानून मुसलमानों को नागरिकता प्रदान करने से चुनिंदा रूप से बाहर रखकर धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। यह धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के खिलाफ है, जो भारत के संविधान का मूल सिद्धांत है। उनके और अन्य छात्र संगठन CAA के विरोध में रणनीति बनाने की योजना बना रहे हैं। वे 2019 में विश्वविद्यालय पर पुलिस हमलों के लिए न्याय और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि UAPA के तहत हिरासत में लिए गए CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों की रिहाई की भी मांग करेंगे। शाहीनबाग निवासी हिना अहमद, जिनका पहले भी विवरण दिया जा चुका है, ने कहा कि वे विरोध प्रदर्शन पर विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार अपने एजेंडे के अनुसार काम कर रही है, मुस्लिम समुदाय के मुद्दों की उपेक्षा कर रही है। उदाहरण ही ले ले तो वे पिछले हफ्ते की उस घटना का हवाला देती हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर एक वायरल वीडियो में मुसलमानों को नमाज पढ़ने के दौरान लात मारते हुए दिख रहा है। अहमद बताती हैं कि BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार लोगों के लिए नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए काम कर रही है। वे इस बात से इनकार नहीं करती कि CAA की वजह से लोग डरे हुए हैं और सरकार को दिखाने के लिए अपने दस्तावेज तैयार रखने की बात करते हैं। मेकअप आर्टिस्ट कहती हैं कि मैं मोदी सरकार से पूछना चाहती हूं कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कितने अस्पताल बनाए हैं और कितने लोगों ने उनमें जन्म प्रमाण पत्र हासिल किया है। अहमद आगे कहती हैं कि पहले ज़्यादातर जन्म अस्पतालों के बजाय घर पर ही होते थे, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज नहीं होते थे। शाहीनबाग विरोध प्रदर्शन के दौरान कई लोगों ने दावा किया कि उनके दस्तावेज बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में भी नष्ट हो चुके हैं। वे पूछती हैं कि क्या सरकार चाहती है कि हम नकली दस्तावेज बनाएं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दें। हालांकि उनका यह भी कहना है कि उन्हें अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है कि CAA के तहत किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होगी। अहमद CAA के कार्यान्वयन से ठगा हुआ महसूस कर रही हैं और कहती हैं जो भी होगा देखा जाएगा। द प्रिंट के सुप्रभात अंक को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।